ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाए, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और उसको कराने के लिए हमारे बीच में हैं सिरसा के बिंदु दीदी जी। तालियों से स्वागत करेंगे आप। ज्ञान में लगभग 46 ईयर से हैं, इसके अलावा आप भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर सेवाएं दे चुके हैं। आप यूथ विंग, एडमिट विंग और ट्रांसपोर्ट विंग में विशेष सेवाएं दे रहे हैं। आपने बैंक में भी जॉब की है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण यात्राएं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स देश भर में बिंदु दीदी जी करते रहते हैं। आज हमारे सामने ब्राह्मण जीवन किसको कहा जाए, सच्चे ब्राह्मण जीवन की निशानियां क्या हैं, हमारे सामने समक्ष हमारे रखेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सब कौन बैठे हैं? ब्राह्मण और सच्चे ब्राह्मण दो शब्द आ रहे हैं ना, अभी बहन जी ने बोला सच्चे ब्राह्मण। ये क्यों बोला? क्योंकि कोई झूठे ब्राह्मण भी बैठे हैं क्या? क्यों जरूरत पड़ी ये सच्चे ब्राह्मण शब्द को यूज करने की? बाबा ने हम सबको टाइटल दिया कि आप सब मेरे ब्राह्मण बच्चे हो। शायद सच्चे ब्राह्मण शब्द की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जो बाबा का बच्चा बन गया और मुरली सुनने लग गया तो बस उसको ब्राह्मण कहने लग ही जाते हैं, चाहे स्थूल व सूक्ष्म लेवल पे उसकी धारणाओं की कोई भी स्थिति हो, वो अपने नाम के साथ बीके लगाने लग जाते हैं। क्योंकि वो मुरली क्लास में आते हैं इसलिए वो अपने नाम के साथ बीके लगाते हैं। कोई कोई पूछते भी हैं, जैसे डेली नहीं आ पाते, हफ्ते में एक दो बार आए, क्या हम अपने नाम के साथ बीके लगा सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल परिभाषा ये बन गई कि जो रोज क्लास करे, मतलब मुरली सुने, तो समझो वो बीके लगा सकता है। बाबा ने बहुत बार स्पष्ट किया है, ब्राह्मणों की परिभाषा को, और वैसे बीके माना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। बाबा बताते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल कौन ले सकता है, पर हम देखते हैं धीरे धीरे ये वैसे एक नॉर्मल सा शब्द बन जाता है। और इससे भी आगे जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गया वो ब्रह्मा कुमार कुमारी, कुछ ऐसा ही प्रैक्टिकल में हम देखते हैं ना। लेकिन जब सच्चे ब्राह्मणों की बात आती है तो आज की मुरली से लो, कल वाली बीत चुकी मुरली से लो, बाबा की रोज की मुरली में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सच्चे ब्राह्मणों की परिभाषा आती ही आती है। आज की मुरली के बाबा के कुछ महावाक्यों पर बात करें। जीवन मुक्त अवस्था की बाबा ने बात की, जो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान न्यारे रहते हैं तुझे जीवन मुक्त अवस्था है। प्रश्न आता है कि कमल फूल समान का भाव अर्थ क्या है? एक मुख्य भाव अर्थ जो हम सब जानते हैं और समझते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अगर घर गृहस्थ में रहते कर लिया तो हम समझते हैं जे कमल फूल समान न्यारे हो गए, यानी इकट्ठे भी रहते हैं, साथ भी रहते हैं, लेकिन पवित्र रहते हैं। और बाबा की आजकल मुरलियों में ये भी बहुत आता है कि ब्रह्मचारी तो अच्छी बात है, ये तो हमारा फाउंडेशन है ही, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, फॉलो फादर वाले, ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन वाले। ये कमल फूल समान जीवन की एक कंप्लीट परिभाषा कह सकते हैं। उसी हिसाब से आज हम चेक कर लें कि ये दो बातें ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी प्लस ब्रह्माचारी हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं। अगर हम ब्रह्मचारी तो हैं लेकिन ब्रह्माचारी में फिर थोड़ा सा हाथ सोचने लग जाते हैं, खड़ा करें या नहीं करें पूछने पर, तो मतलब जीवन मुक्त अवस्था कहेंगे। सुबह रजनी बहन जी भी जब मुरली सुना रहे थे, उन्होंने बड़ी सरलता से गीत को लेकर के क्या कहा, जीवन मुक्त किसको कहा जाता है। सुनी ना आप सबने परिभाषा। तो ऐसे सच्चे ब्राह्मणों की परिभाषा कहो, जीवन मुक्त की परिभाषा कहो, बीके की परिभाषा कहो, उसको परिभाषा कहो, विशेषताएं कहो, गुण कहो, निशानियां कहो, उनकी क्वालिटीज कहो, इज ऑल थिंग्स आर वन एंड द सेम थिंग। आज बाबा ने कहा कि आप मनन चिंतन करो कि संगम युग को कैसे एडवर्टाइज किया जाए, संगम युग की एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाए जिससे कि ये मालूम पड़े लोगों को कि भगवान इस धरा पर आकर के राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा संगम युग इज डायमंड, सतयुग इज गोल्ड, त्रेता इज सिल्वर, द्वापर इज कॉपर एंड कलयुग इज आयरन। अब संगम युग इज डायमंड, ये है मनुष्य से देवता बनाने की पाठशाला। बहुत सारी बातें बाबा ने की लेकिन इन सारों को एक सार अंश में हम कहें कि संगम युग को कैसे एडवर्टाइज करें। अब ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपनी अपनी वस्तु की, कोई दो चार धोखे में भी आ जाते हैं, लेकिन वैसे आजकल जो थोड़े बुद्धिजीवी हैं वो क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो लोग बहुत करते रहते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट की बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन एक बार ना हम एक पीस लेके देख लेते हैं या एक बार थोड़ा सा माल लेके देखते हैं कि कैसा निकलता है। अगर ये चीज अच्छी निकली जो ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल में ये चीज इतनी अच्छी निकली देन हम और परचेज करेंगे, होता है या नहीं होता ऐसा, होता है ना। तो ऐसे अब संगम युग को एडवर्टाइज करें कि भगवान आकर के राजयोग सिखा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट शब्दों के द्वारा करते हुए तो हम 87 इयर्स हो गए हैं, कैसे एडवर्टाइज करें। आप सबके दिमाग में भी एडवर्टाइजमेंट के भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जाते हैं ना दुनिया में भी, वो तो कहते हैं सोशल मीडिया के द्वारा करो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा करो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कितने सारे साधनों से वो अपने अपने प्रोडक्ट को अपनी अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन संगम युग की एडवर्टाइजमेंट, ईश्वर का इस धरा पर अवतरित होने की एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, वो आप और हम सब सैंपल हैं। जैसे किसी चीज का सैंपल दिया जाता है ना, सैंपल के आधार पे भी माल खरीदा जाता है कि सैंपल कैसा है। बाबा का एक एक बच्चे का प्रैक्टिकल जीवन सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। वो पूछने के लिए मजबूर हो जाएं, आप कहाँ जाते हो, आप ऐसे कैसे बन गए, मेरे देखते ही देखते आपका जीवन तो बहुत ही अच्छा हो गया, आप बदल गए, पॉजिटिव वे में बदल गए, पहले जैसी नेगेटिविटी या कोई अवगुण आप में नहीं रहे, वो हमारा प्रैक्टिकल जीवन। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अगर आप भगवान के अवतरण को सिद्ध करना चाहते हो कि भगवान इस धरा पर आ चुका है, तुम अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाओ कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें सिखाने वाला कौन, हमारे में शक्ति भरने वाला कौन। संगम युग की एडवर्टाइजमेंट इस विधि से बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जीवन अर्थात, थोड़ा सा लौटो कल वाली मुरली में, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशनुमा जीवन। अगर जीवन में खुशी नहीं तो वो ब्राह्मण कैसा? ये बाबा ने बोला। बाबा के कुछ महावाक्य मैंने नोट किए जो आपको बता रही हूँ, आज की मुरली का भी जो आपको अभी हम सबने बात की। तो बाबा ने कहा, जब आपसे कोई पूछे ना कि अपना अनुभव सुनाओ तो आपको क्या बोलना चाहिए? आज की मुरली में बाबा ने कहा क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बेहद का बाप भगवान मिल गया तो मैं क्या अनुभव सुनाऊं, इससे बड़ी और कोई खुशी की बात ही नहीं है। खुशी, अगर जीवन में खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको भगवान पढ़ाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। वो आपके जीवन से, आपके व्यवहार से नजर आनी चाहिए। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि वर्तमान समय विश्व को इस सेवा की जरूरत है जो आपके चेहरे से, आपके नयनों से, आपके दो शब्दों से हर आत्मा के दुख दूर हो जाएं और उनके जीवन में खुशी भर जाए। चेक करें हम मेरे नयनों से, चेहरे से भगवान नजर आता है? हम इतना सीमित और इतना क्वालिटी वाला, इतना सार्थक अपने मुख से शब्द बोलते हैं जो सामने वाला सुनने के लिए ललायत हो। वंस मोर कहे, आपके मुख से जो निकला हुआ एक एक शब्द है वो हमें अंदर गहरा जाता है। आपके बस ये दो शब्द सुने, मेरा ना मन बड़ा खराब था वो अच्छा हो गया। मेरा दिल करता है कि बार बार आपसे मिले, आपसे कुछ सुने। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं, हमारे सूरज भाई साहब भी बहुत बार इस बात को हाईलाइट करते हैं कि ऐसा समय आएगा और आप सबके जीवन में आना ही चाहिए कि कोई व्यक्ति कहे कि आपके पास 5 मिनट बैठ करके ना मन शांत हो जाता है, आप अपने घर का हमें पानी पिला दो, आपके घर के वाइब्रेशन इतने अच्छे हैं कि यहाँ बार बार आने को मन करता है। हमें भगवान पढ़ाता है वो हमारे किरदार से झलकना चाहिए। मुख से बोलें बाद में, लेकिन हमारे किरदार से ये पहले झलके। ये कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ऐसा आपसे कोई 2 मिनट मिले और उसको फील होना चाहिए। फिर 5 तारीख की मुरली, अभी अभी 5 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही खुशी को लेकर के, कि ब्राह्मणों की खुशी, जो सदा खुश रहते हैं और जो कभी खुश कभी उदास, दोनों प्रकार के ब्राह्मणों की परिभाषा बताई। अगर किसी को भी सभा में ध्यान हो, जो सदा खुश रहते हैं वो पास विद ऑनर, सदैव खुश, हर परिस्थिति में खुश। बाबा ने कहा वो है पास विद ऑनर, जो कभी कभी खुश होते हैं जब उनके अकॉर्डिंग परिस्थितियां हैं, बातें हैं, तो वो खुश हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो उदास हो गए। जो सदा खुश वो पास विद ऑनर, जो कभी कभी खुश उनको धर्मराजपुरी को पास करना पड़ेगा। ये बाबा की 5 दिसंबर की, अभी 5 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा। वहां ब्राह्मणों को मुरली को इतना गहराई से स्टडी करना चाहिए और साथ साथ अपनी चेकिंग, मुरली के लिए हमें कितनी लगन है, मुरली के लिए कितनी तड़फ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा अक्सर कहते हैं आपको ये लगना चाहिए कि भगवान मेरे से पर्सनल बात कर रहा है, ये नहीं जनरल मुरली चल रही है, कोई बात नहीं, चार लाइनें निकल गई तो वापस जाके पढ़ लेंगे, ऐसा करते हैं या नहीं? या वैसे कह देते हैं कोई बात नहीं मुरली तो मैंने पढ़ ली थी, क्योंकि हम ब्राह्मण भी ना उसको कहीं कहीं भक्ति वाले पाठ की तरह पढ़ रहे हैं। जैसे भक्ति में होता है कि मंदिर में जाना है, माथा टेकना है, जल चढ़ाना है, तो हमें भी लगता है बाबा के घर जाना है, दो मिनट योग में बैठना है, मुरली सुननी है, थोड़ी आधी भी सुन ली तो कोई बात नहीं, बची हुई मुरली तो आजकल मोबाइल में मिल जाती है, कहीं भी पढ़ लेंगे। तो ये सोच है ना, ये भी वेस्ट और नेगेटिव सोच में आता है। एक सही स्थान पर बैठ करके सुनना, बाबा के घर में सुनना, संगठन में सुनना, सही वातावरण में सुनना, और फिर उस एक एक वर्ड को फील करना कि बाबा मेरे से पर्सनल बात कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी चेकिंग करते रहना कि मेरी क्या स्थिति है। तो आपको मुरली में बहुत इंटरेस्ट आएगा और मुरली बहुत आपको लगेगा कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है, देखने में तो छोटी सी बात लगती है ना, सदा खुश रहे तो पास विद ऑनर, कभी कभी खुश तो धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। इतना भी आसान नहीं है। सदा खुश रहने के लिए आपको दिन भर में श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे, दिन भर में बहुत सार्थक बोल बोलने पड़ेंगे, दिन भर में जो मन में संकल्प चले उनकी क्या क्वालिटी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी किसी ने कहा, ऐसा कोई कर्म ना करो दिन के उजियारे में जो नींद ना आए रात के अंधेरे में, ऐसा कोई काम ना करो रात के अंधेरे में जो मुंह छुपाना पड़े दिन के उजियारे में। सदा खुश रहना ये बहुत बहुत बड़ी स्थिति है एक, और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मेहनत है, मेहनत ना कहो तो अटेंशन है, चेकिंग है। मिया मिट्ठू तो हम बन नहीं सकते, इसलिए क्या मेरा प्रैक्टिकल जीवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। इसलिए चेक करें मेरी खुशी का थर्मामीटर क्या कहता है, मैं पास हूं, पास विद ऑनर हूं, या मुझे धर्मराजपुरी को पास करना है, क्या करना है, मेरा प्लान क्या है। कहीं ना हमारी जो स्थिति है ना, जो महाभारत का पात्र करण है उस जैसी हुई पड़ी है। हम जानते सब कुछ हैं, जो कुछ हम बात कर रहे हैं ये भी आप सबकी नॉलेज में है, हम केवल आपस में रिवाइज कर रहे हैं, कुछ भी आपसे भूला हुआ नहीं है, आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन समय पर भूल जाता है। जैसे उसको श्राप मिला था ना कि तेरे को समय पर अपना शक्तियां भूल जाएंगी। हमें इस स्थिति से बाहर आना है। बाबा का दिया ज्ञान बल्कि ज्यादा याद आए, हमारा ब्राह्मण जीवन का पर्पज क्या है। एक मुरली में बाबा ने कुछ समय पहले कहा, दो तीन साल पहले, कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है समझदार बनना। ये शायद दिसंबर 26-27 दिसंबर 2019 की मुरली थी, आई थिंक एस्टीमेट है मेरा, 3-4 साल पहले की। बाबा ने कहा, तुम्हारा जब पूछा सभा में एम ऑब्जेक्ट, तो हम सब क्या बोलते हैं, मनुष्य से देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, ये तो रटी रटाई चीजें हैं और ये फाइनल डेस्टिनेशन है जिसको हमने अचीव करना है। लेकिन उसके बीच के जो छोटे छोटे हमारे गोल्स होते हैं, जिसको हमें करना होता है, तो उसमें बाबा ने कहा कि संगम पर तुम्हें समझदार बनना, ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। ऐसे तो दुनियावी हिसाब से देखें कोई बाबा के बच्चे कितने समझदार हैं, उनकी कोई संसारिक हिसाब से समझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा की मुरली के अकॉर्डिंग उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए हम कितने समझदार हैं। मेरा एक भी नेगेटिव संकल्प चलता है, क्या मुझे थॉट आता है कि इससे मेरा पाप कर्म बन रहा है? एक साधारण संकल्प, ये ऐसा ये वैसा संकल्प आते ही कि अंतरात्मा कहती है कि नहीं, ये मेरा खाता माइनस में जा रहा है, ये वेस्ट है, ये नेगेटिव है, इससे मेरी कमाई घट जाएगी, मेरी कमाई में अंतर पड़ेगा। बाबा को ये संकल्प बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बाबा मेरे लिए क्या सोचते होंगे। चलते ऐसे संकल्प, ये है समझदार बनना। तब शायद बाबा ने कहा, एक मुरली में बाबा ने कहा अभी कुछ समय पहले, ब्राह्मण लाइफ का पर्पस, पर्पस ऑफ ब्राह्मण लाइफ, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मन की स्थिति सदा अच्छी रहे, ये हमारा संगम युग का एक एम ऑब्जेक्ट है। एक सबसे बड़ी अटेंशन देने की बात है कि परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन मन की स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए, इस पर हम कितना काम कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा की जब मुरली सुनते हैं तो उस मुरली को इस ढंग से सुने कि रोज अपने लिए निकाले कि आज की मुरली में जो बाबा ने कहा उसमें से कौन सी बातें मेरे जीवन में हैं और कौन सी बातें मेरे जीवन में नहीं है। ये हमारा पर्पज ऑफ लाइफ है इस समय का, संगम युग का। बाबा की मुरलियों को जब इस गहनता से हम सुनेंगे, सुनाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, गहरा चिंतन करेंगे, मतलब इस बाबा की मुरली में इतनी साइंस है और इतनी डीपनेस है कि पूरे जीवन को पलट के रख देती है। बाबा की मुरली में एक बात कई बार आती है, बच्चे समझो आपकी एक मुरली मिस हो गई, या एक मुरली में से भी कुछ लाइनें मिस हो गई। जिस दिन आपने उस मुरली को ध्यान से नहीं पढ़ा, शायद ब्राह्मण खाना पूर्ति के लिए पढ़ तो लेते ही है मेजोरिटी 99%, चाहे मोबाइल से पढ़ लें, चाहे ऊपर नीचे का पढ़ लें, चाहे एक दूसरे से सुन लें, ऐसा तो कर लेते हैं, लेकिन उस ध्यान से नहीं पढ़ा और उसमें से कौन सी ऐसा बाबा ने कहा महावाक्य हो जिससे आपका जीवन बदल जाए और वही महावाक्य आपका मिस हो गया। एक एक लाइन पर मनन चिंतन है, एक एक बाबा की मुरली की एक एक लाइन का मीनिंग है, ये बहुत अटेंशन देने की बात है। इस पर मेरा कितना अटेंशन है, तो बाबा की मुरली तो हम जितनी का भी उदाहरण दें उतनी ही कम है। बहुत सारे बाबा के ऐसे महावाक्य हैं जो हमें ये बताते हैं, अभी आप पूरे ब्राह्मण नहीं हैं, आप सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। बाबा ने कुछ समय पहले पवित्रता की परिभाषा बताई। बाबा ने कहा पवित्र वो जिसको एक भी वेस्ट संकल्प ना आए, एक भी नेगेटिव संकल्प ना आए। फिर जब पूछते हैं हाथ खड़ा करो तो करेगा कोई? और वैसे हम कहते हैं हम तो इतने साल से पवित्र हैं, बहुत अथॉरिटी से कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, संपूर्ण पवित्र जिसको बाबा कहते हैं। बाबा ने हमें ब्राह्मण का टाइटल दिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल दिया। जो टाइटल देने वाला है, जो डिग्री देने वाला है, उसका चेकिंग मीटर क्या है वो इम्पोर्टेंट है। बाबा ने टाइटल दिया और टाइटल बताया वास्तव में कि आप सब ये बन सकते हो। उसी हिसाब से फिर हमें अपनी चेकिंग की बात आती है कि हम अपने आप को चेक करते चले। मेजोरिटी देखा जाता है कि हमारा इंटरेस्ट बनता है दूसरे की कमी कमजोरी सुनने में, देखने में, समझने में। एक बार दादी प्रकाश मणि जी क्लास करवा रहे थे, बड़े दादी, तो उन्होंने एक बात कही, कहते ऐसा देखने में आता है कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी काम तो वही कर रहे हैं अज्ञान काल वाला, लेकिन पात्र बदल दिए। काम वही है मेजोरिटी का, लेकिन पात्र बदल दिए। पहले नान बीके थे, तो नान बीके अपने लौकिक संबंधी, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, उनकी बातें करते थे, ये तो बहुत अच्छा है, ये थोड़ा ऐसे ही है, ये तो सही है, इसका थोड़ा गड़बड़ घोटाला है। आप ब्राह्मण बन गए तो फिर ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं कि कौन बहन अच्छी है, कौन नहीं अच्छी, कौन भाई बहन अच्छा है, कौन कम अच्छा है, कौन क्या करता है नहीं करता है, किसकी धारणाएं कैसी हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें छुट्टी दी ही नहीं किसी को देखने की, हमें केवल अपने आप को देखना है। सच में हर एक सूक्ष्म लेवल से चेक करो कि दादी जी की ये जो महावाक्य है या स्टेटमेंट है मेरे पर लागू होती है या नहीं। ये काम कहीं ना कहीं वही है, पात्र बदल गए हैं। सच में पूछो, हमें दूसरे की कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं, कभी ना कभी जबान पर आती हैं। एक दो के जिनके साथ बहुत अच्छा सा प्रेम होता है, उनके साथ शेयरिंग में आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है, एक दूसरे को वो बातों की शेयरिंग करते हैं। ये लीकेज पॉइंट्स हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के, ये लीकेज पॉइंट्स हैं। जितनी ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देखता है ना, उतनी ऊंची दृष्टि से हम खुद को नहीं देखते, पक्की बात है। बाबा हमें देवता रूप में देख रहे हैं और रोज कहते हैं मुरली में तुम देवता थे, मंदिरों में तुम्हारी पूजा होती है, तुम वो सीन को इमर्ज करो कि मेरे सामने भक्तों की लंबी लाइन है। देखो एक थ्योरेटिकल तो भले हम सीन बना लें, लेकिन प्रैक्टिकल में देखो कि हम इतनी ऊंची दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। लगता है कि मैं इतना सक्षम हो गया हूं, हो गई हूं, कि सामने कोई भी अपनी आश लेके आए और उसकी वो आश पूर्ण हो जाए, या मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई हैं, मन में अभी कोई भी इच्छा बाकी तो नहीं है। हम खुद के लिए कर रहे हैं या औरों के लिए कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि तुम प्रजा बनने वाले नहीं, प्रजा बनाने वाले हो। लेकिन इसके लिए बाबा ने एक बात कही कल की मुरली में ही, 10 दिसंबर की, में साक्षी पन के राजा के तखत पर बैठो। प्रजा बनाने वाले हो, बनने वाले नहीं, लेकिन कौन है बनाने वाले, जो साक्षी पन के तखत पर राजा बनकर के बैठना जानते हैं। शब्द तो बाबा के बहुत अच्छे लगते हैं, प्रजा बनने वाले नहीं बनाने वाले हो। हमें लगता है देखो चलो बाबा ने एक बात से तो निश्चिंत कर दिया ना कि हम प्रजा नहीं बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे और हम तो प्रजा बनाने वाले हैं, हम बनने वाले नहीं। पर इसके साथ साथ बाबा के दूसरे महावाक्य भी हैं कि राजा, प्रजा, दास दासियां, चंडाल, वो भी सारे सभा में ही बैठे हैं। ये भी तो बाबा साथ साथ कहता है ना, वो भी कोई और नहीं है, प्रजा वाले, दास दासियां, चंडाल, वो भी इसी सभा में है, राजे भी इसी सभा में है, सारे एक ही सभा में बैठे हैं। क्योंकि वैसे भी जब सभा लगती है तो बैठे तो सारे ही होते हैं ना, सभा में बैठने का अधिकार तो सबके पास होता है। अब चेक कर लें हम अपने आप को, बाबा ने टाइम टू टाइम परिभाषाएं बताई हैं, प्रजा क्वालिटी कौन क्या करती है, राजा क्वालिटी क्या करती है, प्रजा बनाने वाली क्वालिटी क्या करती है। प्रजा बनाने वाले माना राजा बनने वाले, तो बाबा बहुत बार कहते हैं ना, कहते तो तुम हो मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगी, रानी बनूंगी, लेकिन प्रजा कितनी बनाई, वारिस कितने बनाए, कितनों को संदेश दिया। राजा मतलब बहुत बड़े दिल वाला, राजा मतलब क्षमा भाव, राजा मतलब सबके लिए समान दृष्टि, राजा मतलब सबका भला सोचने वाला। मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति उदास ना हो, परेशान ना हो, मेरा राज्य खुशहाल हो। उसके लिए भी बाबा के महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं। सबसे पहले भीतर का राज्य, आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कार, तुम्हारे कर्मचारी, तुम्हारी प्रजा, ये कैसे काम कर रही हैं, फिर स्थूल कर्मेंद्रियां, फिर आप जिनके भी संपर्क में आते हो, उन सबके जगत माता जगत पिता बनकर के सबकी गलतियों को भुलाने वाले, समाने वाले, माफ करने वाले, सारी स्थिति संगम पर धारण करनी है। ये चीज हमको समझनी है, सबसे मुख्य है। सच्चे ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता कि जो कुछ हम भविष्य विजन देख रहे हैं अपने कैरियर का, अपने करेक्टर का, अपनी अचीवमेंट्स का, फ्यूचर विजन जो बना है हमारी बुद्धि में, उसका सारा ट्रेलर, उसका सारा स्वरूप हमें संगम युग पर बनना है। ये सबसे मुख्य बात है और बाबा बहुत बार स्पष्ट किया है, ये संगम युग पर है सारा कुछ। संगम युग पर अगर तुम जीवन मुक्त नहीं, तो भविष्य की जीवन मुक्ति, सत्युग वाली जीवन मुक्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। अगर संगम युग पर तुमने संस्कार मिलन की रास नहीं की, तो सत्युग में तुम श्री कृष्ण के संग रास नहीं कर सकते। सब कुछ तुम्हें संगम युग पर करना है। मेरे संगम युग के राज्य दरबार का क्या हालचाल है? कभी कभी बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना कथा करने वाला। जिस ब्राह्मण को कथा नहीं करनी आती, उस ब्राह्मण की कोई वैल्यू नहीं होती। लौकिक संसार में भी कोई ब्राह्मण तो हो, लेकिन उसको सुनाना ना आता हो, कथा ना करनी आती हो, तो उस ब्राह्मण की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी की कथा करने वाले की होती। ठीक इसी प्रकार इस मुख से हम किसी को सुना ना सकें या सुनाते नहीं, वो भी सच्चा ब्राह्मण नहीं। बाबा ने कहा अगर समझाते नहीं तो समझो अभी पूरा समझे नहीं है, ये अक्सर बोलते हैं बाबा। क्योंकि जिसको जीवन में उतर आया, जिसने समझ लिया, वो सुनाने बगैर रह ही नहीं सकता। उसके अंदर एक लगन उठती है कि सबको बाबा से मिला दें, सबको बाबा का परिचय दे दें, सबको ये बता दें कि भगवान इस धरा पर आ चुका है। लेकिन सुनाने की भी जो बात है ना, वो जान पहचान वालों को सुनाना ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर आपको लोग जानते नहीं, कहीं दूर दराज जाकर के आप सुनाते हो, तो उनको आपके प्रैक्टिकल जीवन का पता नहीं कि आप सच्चे ब्राह्मण हो या नहीं हो। लेकिन आप जिस शहर में रहते, जिन लोगों के संग में आते हो, उनको जब सुनाते हो तो वो आपकी पहली लाइफ को भी जानते होते हैं कि आप पहले कैसे थे, और अभी भगवान का बनने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया है, वो दोनों लाइफ को देख रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा सा समझ सकते हैं कि बीके बनने के बाद आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उन्हीं बच्चों के लिए बाबा कहते हैं कि चलो वो योगी बने या नहीं बने, लेकिन आपका प्रैक्टिकल जीवन अगर बहुत अच्छा है तो सहयोगी जरूर बन जाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सहयोगी जरूर बनेंगे, और सहयोगी ही धीरे धीरे सह कट जाता है, योगी रह जाते हैं। सहयोग करते करते उनको बाबा का ऐसा बल मिलता है कि वो भी योगी बनने की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। जो बाबा के पवित्र और तपस्वी और योगी बच्चे हैं, बाबा ने कहा उनको कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। ठीक कहा बाबा ने, जो मेरे पवित्र और योगी बच्चे हैं उनको कभी कोई कष्ट दे नहीं सकता, कभी कष्ट हो नहीं सकता। ठीक है बाबा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य तो गलत नहीं हो सकते, मेरे पर कितने लागू होते हैं? क्या किसी व्यक्ति के शब्द, किसी व्यक्ति का व्यवहार मुझे कष्ट देता है या नहीं, चेक करना है। बाबा उदाहरण देते हैं कि गुलाब का फूल होता है, उसके साथ भी कांटे होते हैं, लेकिन किस लिए होते हैं? उसकी रक्षा के लिए होते हैं, कांटे उस फूल को बचाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो तो छोटी छोटी परिस्थितियां रूपी कांटे, बातों रूपी कांटे, औरों के शब्दों रूपी कांटे जो आते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। एक बार दादी से किसी ने सवाल पूछा कि फलां व्यक्ति ऐसे हमारी निंदा कर रहा है, तो दादी ने उसको बड़े प्यार से, कुदरती हम लोग पास में बैठे थे, बहुत पुरानी बात है, 30-35 वर्ष पुरानी, तो दादी जी ने कहा कि वो आपको ये बता रहे हैं कि हम सत्युग में जाने वाले नहीं हैं, अर्थात बड़ा पद पाने वाले नहीं हैं, वो आपको स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका जो राजा पद है ना वो फाइनल है, क्योंकि बाबा ने कहा सत्युग में तो निंदा ग्लानी होती नहीं, अगर यहाँ पर वो निंदा ग्लानी का धंधा कर रहे हैं तो इट मीन वो अपने पद को डाउन डाउन करके पीछे ले जा रहे हैं, तो इसलिए आपको और ही खुश होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए कि अब ये कंपिटिटर जो है वो लाइन से बाहर हो रहे हैं। कंपिटिटर ये सत्य बात है, ईश्वरीय महावाक्य है कि जो काम सत्युग में नहीं होता अगर संगम पर कोई ब्राह्मण वो कर रहा है तो इट मीन्स फिलहाल वो उस लाइन से बाहर है, राजा क्वालिटी से, सच्चे ब्राह्मणों की क्वालिटी से वो बाहर है। अभी उसको और बहुत सारे पुरुषार्थ की आवश्यकता है उस लाइन में वापिस आने के लिए। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा, कोई कुछ भी आपके लिए बोले तो आप सोचो वो आपके पापों को धो रहे हैं, तो हो सकता है आप इतना तप ना कर पाते हो तो वो अपने पाप बना रहे हैं और आपके पापों को धो रहे हैं। ऐसे ऐसे संकल्प जब उस घड़ी मन में चलेंगे तो आपको कोई ख्याल ही नहीं आएगा, कोई कुछ भी बोलता रहे आपके लिए, आपके किसी खास व्यक्ति के लिए, तो आपको कुछ भी फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि आप और ही खुश होंगे, क्योंकि हमेशा जो निंदा गलानी है ना सफल लोगों के हिस्से में आती है। आप सोचो छोटे मोटे लोगों की कोई निंदा करता है? जिनको कोई जानता ही नहीं उनकी निंदा किसके पास करेंगे, जिसको सारे जानते हैं, जिनका कोई अच्छा स्टेटस है, उनकी निंदा करेंगे ताकि उनके स्टेटस में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो इसलिए समझो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका नामाचार बढ़ रहा है। जो हमने बात की थी पर्पज ऑफ रियल ब्राह्मण लाइफ, क्या बात की थी हमने, पर्पज ऑफ रियल ब्राह्मण लाइफ क्या है, अभी आज जो हमने चर्चा की, परिस्थितियां कैसी भी हों लेकिन मन की स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। हमारी स्थिति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और कितनी भी प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए अगर स्थिति रूपी संपत्ति और प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारी सारी प्रॉपर्टी बेकार है। जैसे दुनिया में भी तो कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति खुश ना रहता हो, किसी के घर में कला क्लेश हो, कहते पैसे की तो कोई कमी नहीं पर इनके घर में ना शांति नहीं है, इनके घर में खुशी नहीं है, तो उस घर की कितनी वैल्यू होती है। लेकिन किसके पास धन थोड़ा हो लेकिन उनके घर में बहुत खुशियां हो तो क्या कहते हैं, ये लाइफ को रियल एंजॉय करते हैं, पैसे की क्या बात है। ठीक इसी प्रकार खाली ज्ञान सुनने सुनाने से कुछ नहीं, आजकल बाबा बहुत कहते हैं मुरलियां में सुनाने को, तो एक छोटे बच्चे को कमेंट्री भी हम रटा देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को बिठा देते हैं स्टेज पे, 10 साल की बच्ची वो बोलती है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बहुत अच्छी सी कमेंट्री करा देती है, लेकिन उसको पता कुछ भी नहीं होता। एक बच्ची को किसी बहन ने स्टेज पे बिठा दिया कि तुम योग कराओ, 15-16 साल की बच्ची होगी, तो मैंने उसको कहा कि उस समय तेरे मन में क्या चल रहा था जब तुम योग करा रही थी, कहती कुछ नहीं दीदी, मगर कुछ तो चल ही रहा होगा ना, कहती नहीं बस मैंने तो आप दीदियों को यही देखा था भी स्टेज पे बैठ के जब योग कराते हैं ना तो सबकी तरफ थोड़ा थोड़ा देखना होता है, तो मैंने भी सबकी तरफ देखा जब मैं स्टेज पे बैठी थी, भी जितने भी सामने बैठे हैं 2-2 सेकंड उन सबकी तरफ देखना है, तो उसको ये नहीं पता कि ये दृष्टि देना होता है, इस दृष्टि देने का मतलब क्या होता है। मतलब बाबा कहते थ्योरेटिकल कोई बात नहीं है, थ्योरेटिकल में तो इतना है कि जैसे खुशी पर किसी को क्लास करानी है तो जैसे उसने कोई PhD की हुई है वैसे क्लास करा सकता है, लेकिन क्या सच में खुश रहने में PhD है हमारी, ये महत्वपूर्ण है। और वैसे बाबा ने कहा अनपढ़ भी आजकल PhD है, PhD पुल हिम डाउन, दूसरे को कैसे पीछे हटाना है, इसमें सारे PhD हैं, चाहे वो कभी स्कूल भी नहीं गए तो भी वो PhD है। बहुत जरूरी है कि हमारा जो अज्ञान काल का जीवन था उससे आज का ब्राह्मण जीवन, कभी ना ये लिस्ट बैठ के निकालना कि पहली जीवन और अब की जीवन में सूक्ष्म लेवल पे क्या अंतर है। देखो स्थूल लेवल पे तो आप निकालेंगे पहले हम बाजार का खाते थे अब नहीं खाते हैं, पहले हम पवित्र नहीं थे अब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, पहले हम कहीं भी खा लेते थे अब नहीं खाते हैं, अब हम पवित्र के बने हाथ का भोजन खाते हैं, पहले हम प्याज लहसुन खाते थे अब नहीं खाते हैं। स्थूल निकालना बहुत आसान है, स्थूल में आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स बन जाएंगे पहली जीवन और अब की जीवन, लेकिन सूक्ष्म लेवल पर माइक्रो लेवल पर पहले की जीवन और अब की जीवन में क्या अंतर है ये आप लोग जरूर निकालना। सच्चे ब्राह्मण मतलब जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, सच्चे ब्राह्मण मतलब जो सदा खुश रहते हैं, सच्चे ब्राह्मण मतलब जिनका जीवन गुणों से भरपूर है, जो निरंतर एक बाबा की याद में मगन रहते हैं, एक की लगन में मगन है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अब ये मुरली में भी आता है, हम भी बहुत बार बोलते हैं। अभी भी मैंने आधा सेंटेंस बोला मेरा तो एक शिव बाबा, तो आप सब फटाफट बोले दूसरा ना कोई। जरा प्रैक्टिकल में भी देख लें। एक गीत है दुनिया में, जी आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। हम सब किसके लिए गाएंगे? उन्होंने तो इंसानों के लिए गाया, और हम बाबा के बच्चे किसके लिए गाएंगे? बाबा के लिए। मैं एक जगह टीचर्स बहनों की क्लास करा रही थी, तो एक छोटी टीचर ने मेरे से उठ करके पूछा। मैंने उनको कहा कि ये गीत आप सारे गाओ, तो गाने से पहले बड़ी मासूमियत से एक बहन छोटी मेरे से पूछती है, दीदी अगर अब मान लो भूल चुक में भी कोई याद आ गई, समझो मम्मी की आ गई, किसी की आ जाएगी, फिर मैं अंधी हो जाऊंगी? क्योंकि उस गीत में लाइनें हैं जी, आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। तो फिर मैंने उनको कहा नहीं, ऐसे अंधे नहीं होते, इसका भाव अर्थ समझो कि हमें ऐसी खेंच पड़े किसी की कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। एक नॉर्मल जात तो हम वैसे भी बातों में करते ही हैं कि हाँ जी हमारी मदर ने हमें ये बात सिखाई थी, लौकिक माँ ने ये बात सिखाई, लौकिक पिता ने ये बात सिखाई, उन्होंने हमें जन्म दिया है। और वैसे नॉर्मल याद तो हम अच्छे रूप में भी करते हैं ना। अब हम बैठे हैं, हम दादियों की जो साकार में हमारे बीच में नहीं है उनकी शिक्षाओं को भी हम रोज याद करते हैं। हम ये भी कहते हैं दादियां बाबा का ही रूप है। वो एक नॉर्मल याद की कोई बात नहीं, लेकिन उनकी याद सताए बाबा की बजाय अब लौकिक में या किसी और में बुद्धि जा रही है और बिना मिले तड़फ रहे हैं, उस याद की बात बाबा करते हैं। हम तो बाबा की बात ही कहते हैं ना, दुनियावी जितने भी गीत है इंसानों के लिए, और वो सारे गीत हमारे बाबा के लिए। जैसे दूसरा गीत है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, बाबा जो कहें। जब हमारा फेथ, हमारा निश्चय ब्लाइंड फेथ में बदल जाए, अर्थात जहां ब्लाइंड फेथ से बाबा पूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास में बदल जाए, तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि बाबा ने दिन को कह दिया रात तो हमने स्वीकार कर लिया, ये सच्चे ब्राह्मण है। आपने पढ़ा होगा या दादियों से सुना होगा कि एक बार बाबा के हाथ में कहीं से वो अंडा आया और बाबा ने मम्मा को कहा कि मुंह खोलो, और मम्मा ने मुंह खोल लिया। बाबा ने कहा बच्ची अगर मैं सच में अंडा डाल देता तुम्हारे मुंह में, तुम तो मुंह खोल के खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा बाबा अंडा भी खिलाए हमारे लिए, वो भी प्रसाद है, खिला कौन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। बाबा ने खिलाया तो नहीं ना, बाबा ने पेपर लिया निश्चय का, बाबा ने पेपर लिया बाबा के प्रति श्रद्धा का कि भगवान अगर हमें अंडा खिलाए तो वो भी हमारे लिए प्रसाद है। लेकिन बाबा ने डाला तो नहीं मुंह। तो निश्चय का मतलब ये होता है, ये निश्चय मतलब निश्चय, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बाबा जो कहे बाबा की आज्ञा सिर माथे, सच्चे ब्राह्मण माना, अटल निश्चय, अटल विश्वास बाबा पर। खुद पर भी निश्चय हो, बाबा पर भी हो, ड्रामा पर भी निश्चय। ड्रामा अर्थात ज्ञान पर संपूर्ण निश्चय, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी किसने दिया है, तो वो भी ज्ञान ना बाबा ने दिया, ज्ञान के एक एक महावाक्यों पर निश्चय। आजकल बाबा इसको बहुत पक्का करा रहे हैं। ये कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा कि अगर साकार के द्वारा कोई गलत राय भी दी गई या कुछ गलत हो भी गया, तो भी बाबा उस पाप का भागीदार भी आप नहीं हो, क्योंकि आपने साकार की आज्ञा पर किया। इसलिए बुद्धि ज्यादा चलानी नहीं है कि मुझे ये कह दिया है निमित दीदी ने या बड़ों ने, पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। हम अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बुद्धि को इतना मत चलाओ, कुछ गलत भी हो गया तो बाबा अपने आप उसको ठीक में बदल देगा। गलत होता नहीं है, बाबा की कोई राय गलत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को संकल्प चलता है तो बाबा फिर उस पर सावधानी देते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा हमारा, हमारी धारणाएं हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है, स्थूल और सूक्ष्म। हमें सूक्ष्मता की ओर ज्यादा बढ़ना है, अपने एक एक संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार, चलन, नैन, चेहरा, सबकी ओर हमें ध्यान देना है। स्थूल धारणाओं में तो आप सब पुराने हो गए, लेकिन सूक्ष्म धारणाओं में अभी भी हम नए हैं। उस तरफ हमें अपने अटेंशन को अभी बढ़ाते जाना है, सूक्ष्म धारणाओं की ओर। सच्चा ब्राह्मण अर्थात जिसका पूरा ध्यान अपने पर है, हम किसी भी चीज के गुलाम नहीं है। आज कहीं ना कहीं हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। किसी का व्यवहार हमें कष्ट दे देता है, किसी के शब्द हमें कष्ट दे देते हैं, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थितियां हमें कष्ट दे देती हैं, हमारा मूड ऊपर नीचे हो जाता है, हमारी खुशी ऊपर नीचे हो जाती है। अरे मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी, उसके लिए तो मैंने बहुत ही किया, उसने ऐसा किया, वो चीज हमें कष्ट देती है। तो मतलब हम परिस्थितियों के गुलाम, हम व्यक्तियों के गुलाम, हम बातों के गुलाम, हम किसी के व्यवहार के गुलाम हो गए। आजादी की जिंदगी जियो। सच्चे पवित्र योगियों को कोई भी कष्ट दे नहीं सकता, ये बाबा के जो महावाक्य हैं, जो लिख लो, मैं पवित्र सच्चा तपस्वी योगी, मुझे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, किसी का व्यवहार कष्ट दे नहीं सकता। मैं आजाद हूं, मैं गुलाम नहीं हूं परिस्थितियों का। बाबा ने हमें इतना बड़ा टाइटल दिया है कि तुम विश्व परिवर्तक हो, विश्व को बदलने वाले, और हम अपने मूड को ही बदल नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम पूरे देश के या पूरे विश्व के रक्षक हो, और हम अपने मूड की ही रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी खुशी की रक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी स्थिति की रक्षा नहीं कर सकते। और फिर बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, बी के फलाना, ब्रह्मा कुमार फलाना। ब्रह्मा कुमार कहते ही चेहरे पर वो चमक, स्थिति की वो झलक आनी चाहिए। ब्रह्मा कुमार कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है, ब्राह्मण कोई छोटी डिग्री नहीं है। ब्राह्मण माना संकल्प भी शुद्ध, बोल भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, एक एक व्यवहार भी शुद्ध, सबके प्रति बेहद की दृष्टि, बेहद का बाबा, बेहद के हम उसके बच्चे, और बेहद की हमारी दृष्टि, वृत्ति, कल्याण की भावना पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति हो। इतने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को संसार कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। आप देखो बाबा के बच्चे वीआईपी बन जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों में लोग जाते हैं, इतने मशहूर नहीं होते, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाता है वो मशहूर ज्यादा हो जाते हैं। उनको भी पता है तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, इसलिए वो कहते हैं आपको ये शोभा नहीं देता, ऐसा ऐसा बोलते हैं कई बार। तो सच्ची बात बोलते हैं कि आपको हम बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, आपका इस तरह का व्यवहार या बोल आपको शोभा नहीं देते। ये एक गर्व की बात है हमारे लिए कि हमें ये शोभा नहीं देता, मींस वो हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं और देखना चाहते हैं। तो जितनी ऊंची नजरों से बाबा हमें देखता है, हम स्वयं भी अपने आप को उतनी ऊंची नजरों से अपने भविष्य, जो हमारा टारगेट है, उसको बुद्धि में रखते हुए उतनी ऊंची दृष्टि अपने लिए बनाए, और सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके बाबा का नाम बाला करें। बाप प्रत्यक्ष होगा और साथ साथ बाबा के बच्चे भी ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष होते जाते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी ने बहुत सहजता से हम सबको बताया कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं क्या हैं, किस तरह से हमें जीवन को जीना है। जैसे कि इनका नाम है बिंदु दीदी, बहुत सारे बिंदु आपको मिले होंगे जो कि बहुत मदद करेंगे ब्राह्मण जीवन को और अच्छे से चलाने के लिए। तो हम बाबा को जरूर प्रत्यक्ष करेंगे दीदी जी, आपकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, बाबा की बातों को जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, तालियों से धन्यवाद करें। ओम शांति।
शिव शक्ति